ओम शांति, ओम शांति, गुड इवनिंग, हैप्पी इवनिंग, गोल्डन इवनिंग। आप सब मुझे ही बोल रहे हैं, थोड़ा अपने आसपास वालों को भी बोल दीजिए, गुड इवनिंग, हैप्पी इवनिंग, नाइस टू सी यू, नाइस टू मीट यू। मोस्ट प्रॉब्ली यू आर सिटिंग विद अ पर्सन हुम यू नो, इजंट इट? सो जस्ट स्टैंड अप, लुक अराउंड, find three people whom you do not know and introduce yourself to them this evening, greet them, wish them, because they are your family now for the rest of the 3 days that you're here. So the time starts now. In 1 minute, try to meet at least three people, wish them, greet them, welcome them, compliment them. They might also give you some compliment. So I hope you like interacting, and we will continue to do so for the rest of the retreat as well. And it is important to know about each other, but it is also important, more important, to know about ourselves. We know a lot about each other, and we sometimes say, "Usko to main acche se janta hoon." But if we ask about ourselves, how much do we know ourselves? If somebody sometimes happens to ask you, why is your mood off today? So many times our answer is, pata nahi. Isn't it? Hame nahi pata. If we don't know the reason, how can we find the resolution? And how can we expect others to know it and solve it and make us feel better? And if we do not know it, if others cannot guess it, how can we then expect our relationships to become better? So let us take out this time to not just empower the self, that's the whole theme, but before empowering the self, what is required is to know the self. So I am sure the way this retreat is designed, you have enough time to go deeper, to understand yourselves, to better understand other people as well. Because when you understand yourself, if you know on a hot summer morning or afternoon, when you come back home, the first thing you need is water. See? So because you know you need water, when anybody is coming at your doorstep, what will you offer them? You won't ask them. You would ask them other things later on. But first thing that you offer them, which they expect from you, is water. So how are you able to match their expectations? Because you know yourself. So that's the first step, and I'm sure the way this retreat is designed, each one of you will find enough opportunities to know yourself. And this right now, what I'm going to do is, because knowing yourself will happen gradually throughout the retreat, but to begin with this retreat, I would like to introduce this organization, Brahma Kumaris, to you. Because being the host, it is important for you to know your host. Aap kahan aaye hain, kinke ghar aaye hain, wo kya karte hain, aur aap yahan par आपके साथ क्या क्या होने वाला है, इन द सेंस व्हाट आर यू गोइंग टू लुक फॉरवर्ड टू फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन. फॉर दिस इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. हाउ मेनी ऑफ यू आर अदरवाइज अवेयर अबाउट ब्रह्मा कुमारीज? हाउ मेनी ऑफ यू जस्ट हर्ड ऑफ इट, नॉट मच अवेयर अबाउट इट, जस्ट हर्ड ऑफ इट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली बीन टू दिस प्लेस और एनी ऑफ आर ब्रह्मा कुमारीज कैंपस इन माउंट आबू फॉर एनी अदर प्रोग्राम्स बिफोर? ओके. And how many of you have come to IT programs before? Okay, very few. Okay, so let me introduce this organization to you. So Brahma Kumaris, as it is commonly known as, the official name of the organization is Prajapita Brahma Kumaris Ishwariya Vishwavidyalay. So this is the formal name, and shortly we call it Brahma Kumaris. Why? We'll find out how. We'll find out why. So the name suggests that Prajapita, means praja means people, and pita means father. So we all say God is one, and we all say God is Parampita, Paramatma. So believing that, believing in the universal brotherhood of all and fatherhood of one, we believe if God is one and if He is the creator, He is the father, the medium through which He creates also should be one. So that medium is very commonly known as Brahma. But we call it Prajapita Brahma because He also is a father. So because we are, and Brahma means agent of creation. Creator is God Himself, but the agent of creation is Brahma. So if we are aligned to the task of creation, we are also partners in that contract of creation. So then we become Brahma Kumars and Brahma Kumaris. So Brahma Kumars and Kumaris are also agent in creating the new, a better world for ourselves. And on what basis is the better world created? It is created on the basis of a better self. And to become a better version of yourself, you need to know yourself. And because that knowledge and that technique of becoming a better version of yourself is the basic offering of this organization, it is literally taught in the organization by God Himself. So that is why it is said Ishwarya Vishwavidyalaya. So because we are committed to the re-establishment of a value-based society through spiritual empowerment and personal transformation of individuals by helping them discover their true inner potentials, their strengths, and to maximize them. And headquartered in Mount Abu, this organization is doing active services in almost 140 countries of the world. And in 110 countries, we have our actual centers. Our presence, our activities are spread in over 140 countries of the world. So it is a true Vishwavidyalaya. And we are working at all levels, so you can understand whether by centers established in 110 countries and activities in 140 countries, people of all nationalities, all faiths, all caste, color, religion, creed, gender, profession, age group, everybody is an equal beneficiary of the organization. And the basic offering of the organization is Rajyoga meditation. So Rajyoga is a special technique of meditation. And why it is called Rajyoga and what is special about this technique will be introduced to you during the course of this retreat. And as I said, the Creator, the Father, the incorporeal God, the Father of all the souls is one. And we believe in universal brotherhood of all and fatherhood of one, which is why the organization is called Ishwarya Vishwavidyalaya. And we call ourselves Prajapita Brahma Kumars and Kumaris. And the founding father, the medium through which this knowledge was delivered, this knowledge was made available to mankind, is called Prajapita Brahma. And if I tell you about his, it's a lengthy story, not to tell you about the whole story, but the founding father was actually Lekhraj Kriplani, who got divine insights, divine callings, and the knowledge which was delivered through him to mankind became the medium of to spread the teachings of God by God Himself. So he was a diamond merchant of the 1900s, and this is his life before the spiritual transformation. And when he got spiritual transformation, transformed into the founding father of the Brahma Kumaris. But why? So you can see the humble beginning, the beginning by a small group of 300 people, and mostly women, mostly young girls, not even women, mostly young girls. So you can see those humble beginnings, which is now spread to millions of people. And why it is called Brahma Kumaris? How many of you think, or you used to think that, okay, this must be a women organization? Some of you, right? So this is not a women organization. It is not working for only women. It is for and by, you know, both the genders. But it is called Brahma Kumaris because of the women led, you know, women-based leadership. So all the leaders of Brahma Kum, of this organization, are women. So she is the first administrative head of the organization, who became the administrative head of the organization at the age of only 16. And later on, these are other leaders of the organization. And it is very heartening to also announce the demise of the latest administrative head, Dadi Ratan Moini, who was 101 years old, and she left her mortal coil just 2 days ago on 8th of April. So she was, you can see her in the picture as well, third from the left. So at the age of 101 years, she attained the stage of completion and left this world for our journey forward, because we believe that the journey continues. So some of the sister concerns of Brahma Kumaris through which this organization functions. So we have a trust, we have a foundation, we have a society for catering to different types of needs of spreading this knowledge and its application to all sections of society. And some of the activities of Brahma Kumaris, which includes meditation trainings, meditation retreats. We have our spiritual media to convey our message. We have different healthcare initiatives. We are associated with United Nations in different capacities, and we are a participant to different United Nations projects, various UNEP goals, and we conduct spiritual counselings, conferences, value education courses. We also conduct various social activities, disaster management, relief activities. We believe in universal brotherhood, conducting different seminars and dialogues, spiritual fairs, research awareness campaigns, and many other things. A few courses, just to name a few that Brahma Kumaris offer, it includes foundation course in meditation, courses on self-empowerment, positive thinking, values in family life, self-management, leadership, education in human values, and so on and so forth. This is just the glimpse of a few courses. And we are also associated with United Nations in different capacities. We are an NGO to United Nations in the Department of Public Information. We hold the consultative status in Economic and Social Council of United Nations, as well as UNICEF. And we are a recipient of 7 Peace Messenger Awards by United Nations in previous years, and different organizations with which we are associated with different status. So we are associate status in some, observer status in some, consultative status in some. And we are regular participant of the COP conferences for over 15 years now. And glimpse of the services of Brahma Kumaris, which started way back in 1954-55. And now our centers worldwide in almost 110 countries of the world, and some of the services that we conduct worldwide. Government of India has recognized the activities of Brahma Kumaris and the participation and contribution of the leaders of Brahma Kumaris at many times. So these are some of the commemorative stamps of the organization released. And we are presently in our international headquarters of Mount Abu. This campus is a part of the different campuses based in Mount Abu, and some of our other campuses in different parts of the world. So just to wind up, as mentioned, Brahma Kumaris has a foundation, which is Raj Yoga Education and Research Foundation, which has 20 wings to cater to the needs of different sections of society, to help them understand spirituality and benefits of spirituality in their domain. To name a few, Administrator's Wing, Agriculture and Rural Development Wing, Jurist Wing, Media Wing, IT Wing, Religious Wing, Spark, which is our Spiritual Application Wing, Sports, Women, Shipping, Security, Political, Medical, Education, every field needs spirituality, and how we offer solution to their problems is what are these wings doing. And Rajyog meditation is the basic offering, which is a way to connect to yourself and connect to the Almighty and get powers and begin spiritual transformation. And our motto is spiritual transformation or self-transformation leads to world transformation. So if we want to transform the world, let us transform ourselves, each one of us. And you are welcome to get the divine experience of this Rajyog meditation. As you can see, an army of Rajyogis in the Diamond Hall in Shantivan down at the foothills. So we invite you to experience what all of they are experiencing every moment in their life and bringing out a positive transformation in their life. Thank you very much. And with this, I would like to welcome respected Sudesh Didiji on the stage. I would request all of you to kindly. So I request Didi to please join us on the stage, and I request all of you to kindly welcome her as she joins us from the stage. Respected Didiji is the joint administrative head of Brahma Kumaris as well as the director of this campus, Gyan Sarovar. A Rajyogi for over 45 years, and she's a Rajyogi since her childhood, early childhood, and she has been serving in our international centers, mainly in different parts of Europe. Basically, London is our international coordinating office for the centers outside of India. She served there as a coordinator for all those centers, and presently Germany as well as India is where she travels extensively and then across the world to give the message of peace, harmony, love, compassion and reunion with our Divine Father. So I would request Varsha Didi to please welcome Sudesh Didi with flowers. Flowers from this campus, flowers from Gyan Sarovar. And with this, I also invite Yashwant Bhaiji on stage. Yashwant Bhaiji, yes, please welcome him on the stage. He is the coordinator for the IT wing at the Brahma Kumaris headquarters. As we welcome Sudesh Didi with the flowers of this garden, there are many beautiful flowers out there. And we welcome Yashwant Bhai as the headquarter coordinator for IT wing. He is instrumental to serve the IT fraternity through this wing by organizing programs in the headquarters. We thank Varsha Didi for this. And the IT wing at the headquarters is not just responsible for looking after the IT needs of the organization, but to also deliver better tools of practice to IT professionals, which can help simplify their lives, their mind, and ultimately it will help in your work and in your life. It is also instrumental in running community radios in the whole area, which has gained a lot of appreciation time and again from the local communities. And he's also instrumental in setting up the ham radio and the different tools and techniques of communication. So thank you, Yashwant Bhai, for joining us today. And with this, I would request Yashwant Bhai to share more about the activities of IT Wing. Who are we and what do we do?
ओम शांति, एक बार जोर से बोलेंगे ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा, आदरणीय सुदेश दीदी जी, हमारी चेयरपर्सन ऑफ आईटी विंग आशा दीदी जी, और हमारी नेशनल कोऑर्डिनेटर आईटी विंग मधु दीदी, वर्षा दीदी हमारी वेस्ट इंडिया कोऑर्डिनेटर, ऐसे हमारे चार कोऑर्डिनेटर्स हैं, और हमारी मधुबन आईटी टीम एंड इंडिया आईटी टीम। आप सबको स्वागत करते हैं. और जैसे विधात्री बहन ने बताया कि सारी विंग्स हैं, तो हम लोग जो विंग्स शुरू किया था तो उसमें ये लास्ट विंग है. अभी जैसे 20 विंग हुई तो ये 20th विंग है. सो बाबा की लास्ट फास्ट विंग है यज्ञ की. तो ब्रह्म कुमारीज में जो बाकी विंग्स हैं उससे ये अभी छोटी है, लेकिन सबका बैकबोन बन गई. आप तो आईटी के प्रोफेशनल्स हैं तो आप जानते होंगे कि आईटी अभी इतना इम्पोर्टेंट हो गया है, जैसे रोटी कपड़ा मकान और आईटी. बाकी मिले तो नहीं मिले, लेकिन आईटी जरूरी, इंटरनेट और नेटवर्क डेटा सब ये बहुत जरूरी है अभी. तो ये विंग को शुरू करने के लिए मना जर्नी हम बताएंगे कि हम 88 में लंदन से एक कंप्यूटर छोटा लाया था. तब वो बड़ा कंप्यूटर होता था डॉस बेस. तो एक कंप्यूटर हेडक्वार्टर में यहाँ 4 किलोमीटर दूर हमारा हेडक्वार्टर है पांडव भवन. तो एक कंप्यूटर वहाँ लगाया. तो हमारी ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती थी तो उसमें हम उसमें डेटा एंट्री वगैरह करते थे. फिर हम लोगों ने 8 कंप्यूटर्स का लोकल एरिया नेटवर्क हमने 1991 में हमने शुरू किया. तब उस समय सैटेलाइट से हमने इंटरनेट लिया था. तो ऐसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई. फिर हम ग्लोबल आईटी टीम के साथ जुड़ गए. तो हमारी जो ग्लोबल जितने भी कंट्रीज हैं, जैसे दीदी हमारी यूरोप में है और ऐसे यूके में हमारी टीम है, अमेरिका में टीम है, ऑस्ट्रेलिया में है, ऐसे अलग अलग कंट्रीज में कॉन्टिनेंटल में हमारी टीम है. तो उसके साथ हम इंडिया टीम एक बना के हमने ब्रह्म कुमारीज के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए. क्योंकि अभी एप्लीकेशन डेवलपमेंट की डिमांड आती रही. जैसे अभी आप देखते हैं अकाउंट सॉफ्टवेयर है, जैसे टैली है, SAP है. तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स का कॉस्ट बहुत था उस समय. तो हम लोग थोड़ा इकोनॉमिकली चलते हैं. तो हमारी जो इंडिया आईटी टीम है, एक्सपर्ट्स हैं जो आईटी फील्ड में, तो उन्होंने ये सॉफ्टवेयर एक डेवलप किया. उसका नाम है कनेक्ट वन. तो वो सॉफ्टवेयर से हमारे 5000 सेंटर्स से भी ज्यादा कनेक्ट हुए हैं. तो उसमें डेली सारा डेटा आता है, जैसे बिलिंग वगैरह सब, अपने बैंक स्टेटमेंट सब उसमें सॉफ्टवेयर में आया. तो हमारा पूरा इकोनॉमिकली वो एक कॉस्ट सेव हो गई. फिर एकोमोडेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी, नहीं तो पहले सब हाथ से रूम अलॉट होते थे. तो फिर एक सॉफ्टवेयर उसका बनाया, विजिटर्स ट्रैकिंग सिस्टम. तो वो सॉफ्टवेयर से भी हम 20,000 लोगों को हैंडल कर सकते हैं. तो वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ. ऐसे फिर धीरे 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 सॉफ्टवेयर हमारे डेवलप होते गए. फिर ये आईटी टीम सारी हमारी बनाती गई. फिर एक संकल्प आया कि जैसे विंग बनी है मेडिकल विंग, ऐसे आईटी एक बड़ी विंग बनानी चाहिए. तो 2013 में आईटी की विंग ब्रह्म कुमारीज में बना दिया. फिर उस विंग के कारण फिर हम लोग कॉन्फ्रेंसेस शुरू किए. तो हम लोगों को इसमें अलग अलग जगह अलग अलग हमको स्लॉट्स मिलने लग गए. तो विंग बनने से ये हमारा फायदा हो गया. तो ऐसे विंग्स हमारी जो है अलग अलग जगह, जैसे दिल्ली में ORC है, जैसे विधात्री बहन वहां से आईटी टीम संभालती हैं नॉर्थ इंडिया की. तो ऐसे वहां पे भी हम लोगों ने कॉन्फ्रेंस शुरू किया. तो हमारी ऐसे 3 कॉन्फ्रेंस नेशनल लेवल पे होती हैं. तो जैसे आज का है सेल्फ एम्पावरमेंट का टॉपिक, ऐसे हम लोग अलग अलग टॉपिक पे हम ये कॉन्फ्रेंसेस शुरू करते हैं. तो आप जो अभी आईटी से एक हल्का सा डिटॉक्स करने के लिए आए हैं, जैसे हम आपके जो लेक्चर्स हैं उसी का जो थीम ही है कि आप पूरा 2-3 दिन अपने कारोबार से थोड़ा सा रिलैक्स होके इसका एक अनुभव करेंगे. जैसे आप जाते हैं ना हेल्थ के लिए, जैसे हेल्थ में डिटॉक्स करते हैं, तो ऐसे है ये आत्मा की भी जो हमारी आईटी से हम लोग बहुत बहुत एडिक्टेड जैसे भी हो जाते कई लोग कि उसके बिगर वो रह नहीं सकते. तो उसको थोड़ा सा आप अच्छे अच्छे क्लासेस आपको मिलेंगे, जैसे शिवानी दीदी है, सुदेश दीदी जी, बाला भाई, ऐसे हमारे डिजिटल वेलनेस के अलग अलग टॉपिक्स आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा. और उस टॉपिक्स को आप उसको अच्छी तरह से नोट डाउन करके फिर उसको आप अलग अलग अपने कंपनीज में इसको यूज कर सकते हैं. फिर आप ऐसे ऑनलाइन भी हम लोग इसको कोर्सेस देते हैं. तो हम लोगों ने लगभग 1100 कंपनियों में कोर्स किए हैं अभी तक टोटल 1100, और ऐसे 300 यूनिक कंपनीज में हम लोगों ने उसको कोर्स किए हैं. तो जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट, अलग अलग कंपनीज में, जैसे दिल्ली में काफी कोर्स हुए. ये दिल्ली तो हेडक्वार्टर है आईटीज का, तो दिल्ली है, हैदराबाद, बॉम्बे, पुणे. पुणे में तो अभी काफी हमारे फिजिकल प्रोग्राम भी होते हैं, ऑफलाइन प्रोग्राम होते हैं. वर्षा दीदी का सेंटर है हमारा, एक वहाँ एक रिट्रीट सेंटर है जगदम्बा. तो पुणे में आप लोग वहाँ से कनेक्ट होकर हमारे कोर्सेज को अटेंड कर सकते हैं. तो मुझे आशा है कि आप सब खुश हैं, अपना एकोमोडेशन है और अच्छी तरह से यहाँ प्लेजेंट एटमोसफियर है, न ठंडी है न गर्मी है, और आप इसको अच्छी तरह से लाभ लेके और कम्प्लीटली आप डिटॉक्स होके जाएंगे. ये शुभ भावना के साथ थैंक यू. ओम शांति.
थैंक यू यशवंत भाई जी. जैसे कि यशवंत भाई जी ने बोला कि आप लोग खुश हैं, तो आप लोग खुश हैं, कौन कौन खुश हैं वो जरा बताएं यहाँ आके. तो ये खुशी हमारी दिन दुगनी रात चौगनी होने वाली है. एंड आई वुड लाइक टू मेंशन, भाई जी ने दो शब्द यूज किए, आप लोगों ने शायद उसका कंटेक्स्ट समझा हो या ना समझा हो. आई वुड लाइक टू टेक अ फ्यू मोमेंट्स टू जस्ट एक्सप्लेन यू द कंटेक्स्ट. एक शब्द आपने यूज किया मधुबन. हम इस जो ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर्स है, चाहे वो ये कैंपस हो या जो 4 किलोमीटर दूर हमारा जो मेन स्टार्टिंग कैंपस है, जहाँ 1950 में ये 300 लोगों का ग्रुप आया था भारत, और वहाँ से उन्होंने ये पूरी स्पिरिचुअल एक्सपेंशन शुरू की पूरे भारत में, उसके बाद विदेश में, या तो हमारा जो फुटहिल्स पे अलग अलग कैंपसेस हैं, उन सबको हम बोलते हैं मधुबन. मधुबन में दो शब्द आते हैं, मधु एंड वन. तो मधु का मतलब क्या है? हनी. एंड वन मतलब फॉरेस्ट. सो इट लिटरली मीन्स फॉरेस्ट ऑफ हनी. फॉरेस्ट किस चीज को? मधु तो स्वीटनेस को डिस्क्राइब करता है, एंड फॉरेस्ट यूजली जब हम देखते हैं कि कोई तपस्या करने जाता है तो कहाँ जाता है? फॉरेस्ट. तो यहाँ कोई हमें उन जंगलों में जाके तपस्या नहीं करनी है, लेकिन जहां पर भी हम हैं वहां पर अपने फील्ड में डिटैच्ड होकर के एक तपस्वी की तरह हम कर्म करें. वो हमें सिखाता है, वो हमारे जीवन में मधुरता लाती है. तो वो सिंबलाइज करता है मधुबन, जहां पे आकर के अपने आप आपको वो अनुभव मिलता है, जैसे कि आप सब तरफ से डिटैच्ड है, सबके बीच में होते हुए भी आप डिटैच्ड है, एंड यू इन्वोक योर इनर स्वीटनेस. दूसरा शब्द आपने यूज किया, बाबा. अभी बाबा कौन है? तो यूजली तो हम दुनिया में देखते हैं बहुत बड़ी जटाओं वाले और बड़ी दाढ़ी वाले, उनको बाबा कहते हैं, लेकिन इस संस्था के अंदर परमात्मा को बाबा कहते हैं. बाबा का अर्थ होता है पिता, या पिता जैसा. कोई बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है तो आप उनको बाबूजी करके बुलाते हैं. बाबूजी भी बाबा से डिराइव होता है. तो कई भाषाओं में तो पिता को बोलते ही बाबा है. तो बाबा का अर्थ है पिता. दूसरा, अगर आप बाबा शब्द को ब्रेक करें तो दो शब्द बनते हैं, बा और अब्बा. कई भाषाओं में बा से डिराइव्ड वर्ड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ मदर, और अब्बा फादर. ठीक है. तीसरा, आपने कहावत बोली होगी या सुनी होगी बहुत बार, ये चीज बाबा आदम के जमाने की है. सुनिए, वहां भी बाबा आता है. आदम कौन है? आदम, फर्स्ट मैन. यानी कि मनुष्य से भी पहले, आदम से भी पहले अगर कोई है तो वो कौन है? वो बाबा कौन है? वहां तो डायरेक्ट परमात्मा के लिए शब्द आया है. तो बाबा मतलब परमात्मा, जो माता भी है, जो पिता भी है, और जिनके द्वारा परमात्मा ने ये कार्य शुरू किया, जो पिता समान है, उनको भी हम बाबा कहते हैं. तो ये दो शब्द क्लियर हुए, क्योंकि ये दो शब्द कई बार आपको सुनने में आएंगे, तो आप इसका कंटेक्स्ट समझ जाएं, सो यू विल बी एबल टू रिलेट कि हम यहाँ परमात्मा को बाबा कहते हैं. और आप सब अभी किसके घर आए हैं? बाबा के घर आए हैं। बाबा कौन है? हमारे पिता। तो ये घर किसका है? पिता का घर किसका घर होता है? बच्चों का। तो आप अपने घर आए हैं, तो आदरणीय सुदेश दीदी से रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आप अपने पिता के घर आए हैं और इस घर में अभी हम सबसे बड़े हमारे आदरणीय सुदेश दीदी जी हैं। तो इतने साल आप फाउंडिंग फादर के साथ आपने अपना ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू की, इतनी यंग एज में शुरू की, और आपको बहुत सारी आपने अपने जीवन में जो परमात्मा से पाया है, दोज वर्च्यूज हैव बिकम योर स्पिरिचुअल पावर्स नाउ, एंड योर मेयर साइट दृष्टि जिसको हम बोलते हैं हैज ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ मेनी मेनी इंडिविजुअल्स। तो आपकी दृष्टि तो हमें मिल ही रही है, लेकिन साथ साथ आपकी वाणी के द्वारा भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम लेना चाहते हैं दीदी। आपके बाबा के हम सब अपने घर आए हैं, तो अब दीदी से हम जानते हैं हमारी इस पूरी रिट्रीट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स टू स्टार्ट विद दिस रिट्रीट। आदरणीय सुदेश दीदी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम प्रेम, ओम आनंद। ग्रीटिंग्स, गुड इवनिंग। आपने ओम शांति शब्द तो बहुत बारी सुना होगा। शांति पाठ पढ़ते हैं बचपन से ही, तो शांति न केवल अपने लिए परंतु प्रकृति में भी शांति हो। गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तत्वों में भी शांति हो। शांति अंतरिक्ष गम, शांति पृथ्वी, शांति रापा, शांति रोष दया। हम तत्वों को, सूर्य को शांति देना चाहते हैं, पानी को शांति देना चाहते हैं, धरती को शांति देना चाहते हैं, परंतु देगा कौन? कैसे दी जा सकती है? देने का आधार क्या है? तो वास्तव में देखा जाए, शांति तो आत्मा का स्वधर्म है। ये ग्रीटिंग्स शब्द नहीं है खाली, और जन्म जन्मांतर, जनरेशन आफ्टर जनरेशन शांति पाठ पढ़ते आए हैं। परंतु मैं बड़े प्रेम से, इसीलिए ओम शांति के साथ साथ दूसरा शब्द आपके वेलकम का ओम प्रेम बोला। स्नेह से आपका वेलकम है, वाणी से वेलकम है, दृष्टि से वेलकम है, वृत्ति से वेलकम है, हृदय से वेलकम है। पर फिर मुझे आता है कि यानी मैं वेलकम किस लिए? आप तो अपने घर में आए हो, आप मेहमान नहीं आए हो, आप अपने ही घर में अपना ही अधिकार लेने के लिए, अपने आप में आत्मशक्ति भरने के लिए यहां आए हैं। और आपस में मिलन में जो खुशी होती है, प्लीज टू मीट यू शब्द नहीं है, ये खाली शब्द की बात नहीं है। आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू कॉमन हो गया है, परंतु वास्तव में ये बहुत नेचुरल है। जब हम आपस में आत्मा आत्मा से मिलती है, आत्मा को अपनी सत्यता का पता चलता है, तो न केवल शांति और प्रेम के वाइब्रेशंस होते हैं, परंतु उसका एक्सप्रेशन खुशी होती है। खुशी से भी ज्यादा चीज है आनंद है। आनंद का मतलब जिस खुशी का अंत नहीं है, कॉन्स्टेंट है। परमपिता परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है, उस चैतन्य सत्य है, लिविंग ट्रुथ। जब हम अपने आप को पहचान लेते हैं, अपने आप को जान लेते हैं और ये समझ में आ जाता है कि मुझे करना क्या है, मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ, यहाँ माउंट आबू की बात नहीं कर रही हूँ, इस कर्म क्षेत्र पर करने की बात, आप यहाँ क्यों आए, क्या जरूरत थी इस शरीर को लेने की, शरीर ने आत्मा ली या आत्मा ने शरीर लिया, जिसने लिया वो छोड़ेता है ना। कभी ये नहीं आपने कहा शरीर ने आत्मा छोड़ी, क्या बोलते हैं, आत्मा ने शरीर छोड़ा। तो इन्फॉर्मेशन तो दुनिया में बहुत है, टेक्नोलॉजी हमको बहुत कुछ सिखाती है, परंतु सबसे पहली इन्फॉर्मेशन अपने आप से हम पूछे कि मैं यहाँ आई क्यों हूँ, क्या जहाँ मैं थी पहले वहाँ संतुष्ट नहीं थी, सुखी नहीं थी, शांत नहीं थी, और मेरा पर्पस क्या है, मैंने शरीर लिया, आत्मा ने शरीर लिया, क्यों लिया। तो शरीर और आत्मा दो चीज हो गई ना, मेरा शरीर कहा, मेरा पैर, मेरा हाथ, मेरा फेस, मेरा नाम, मैं कहने वाली कौन। अगर वैसे इंट्रोडक्शन कराए तो अपनी अपनी रीति से सेम बात को एक्सप्रेस करने के लिए, कोई कहेंगे मुझे जो भी एक नाम है भाई, मुझे श्यामलाल कहते हैं, आई एम कॉल्ड शांति और शीतला और शिवर वाटावर। दूसरा, मेरा नाम ये है, मुझे कहते हैं, फिर कहते हैं मेरा नाम ये है, फिर और आगे बढ़ते हैं तो मैं मोहनलाल हूँ, मैं सोहनलाल हूँ। अब इन तीनों में अंतर क्या है। तो मुझे आत्मा ने जब ये अंदर की रियलाइजेशन है कि एक्चुअली तो मैं शरीर नहीं हूं, ऑफ कोर्स आई एम ए ह्यूमन बीइंग, यू आर ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग कहा तो ह्यूमन और बीइंग, ह्यूमन बॉडी का फॉर्म है ये शरीर, फ्लैश एंड बोन्स, केमिकल का यानी प्रकृति के तत्वों का बना हुआ शरीर है। उस शरीर में मैं लिविंग बीइंग हूं। ह्यूमन बॉडी फाइव एलिमेंट्स का वंडरफुल, कितना वंडर है कि हर एक ऑर्गन अपनी अपनी विशेषता वाला है, पर ऑर्गन की इट्स सेल्फ वैल्यू बिना बीइंग के नहीं है। आंखें हैं, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, आंखें खुली हैं देखता नहीं है, कान है सुनता नहीं है, हृदय है फीलिंग नहीं है, ब्रेन है समझ और सोच नहीं है, कर्म बॉडी पड़ी है कोई एक्शन नहीं है। वो करैक्टर बड़ा बड़ा डिवाइन था, बड़ा जेनरस था, बड़ी लविंग थी, स्वीट थी कौन। तो कहेंगे आत्मा। तो मैं आत्मा हूं या शरीर हूं, पहले इस चीज की अंडरस्टैंडिंग, इन्फॉर्मेशन तो हमको है, हर एक के पास इन्फॉर्मेशन है, आत्मा चली गई, हे परमात्मा मेरी आत्मा को शांति का दान देना, मैं चली जाऊं पीछे मरे, मैं मरने के बाद कहेंगे परमात्मा इनकी आत्मा को शांति का दान देना। पर वंडर ये है कि वो मुझे शांति का दान रो के दुखी हो के दे रहे हैं और मुझे कहते हैं शांति का दान देना मेरे लिए, तो वो दुख में भरी हुई शांति में पहुंचेगी कैसे? तो शांति भी एक्चुअली है क्या? मेरे पास अगर है तो मैं किसको दे सकती हूँ? और वो शांति का सोर्स अथवा शांति शांति का बेसिस क्या है, उसका ओरिजिन, उसकी एग्जिस्टेंस क्या है? तो अभी आप देखिए, हर एक इंसान को बचपन से ही लेकर के एक बात बड़ी नेचुरल है, नॉलेज चाहिए। छोटा बच्चा भी है ना, कहेगा मम्मा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, पापा व्हाट इज दिस, जो भी चीजें देखता है प्रश्न यही पूछता है ये क्या है। और माँ बाप भी बच्चे को पहले पहले उसको पहचान देते हैं, ये तेरी आंखें हैं, ये तेरा नाक है, ये तेरे कान है, ये तेरा अंगूठा है, ये तेरी उंगली है, शरीर की पहचान देते हैं। और वो शरीर में जो आत्मा आई, तो आत्मा को वास्तव में, क्योंकि लिविंग एनर्जी है, लिविंग एनर्जी को एक्सप्रेशन जरूर चाहिए। द एनर्जी वैसे भी एक्सप्रेस करती है और ये तो लिविंग एनर्जी है। वैल्यू इसकी तब है जब इसकी वैल्यू को यूज होता है, और फुल यूज होता है तो जीवन सक्सेसफुल होता है। मिसाल के तौर पर एक बैग में आप 5 किलो सीड्स डाल के रख दो, 5 साल भी पड़े रहेंगे उस बैग में, वो 5,000 सीड सीजन अनुसार, मतलब हो सकता है महंगा हो गया और अनाज तो महंगे हो जाएंगे, परंतु उसी बीज में से, उसी पे बैग में से आपने 5 बीज प्लांट कर दिए। वो 5 बीज जो आपने प्लांट किए वो 5 ट्री बन गए कुछ सालों में। अब एक एक ट्री पर कितने फ्रूट्स हैं और कितने फ्रूट्स में फिर कितने सीड्स हैं? तो अब वैल्यू अगर आप देखें तो आपका वो जो हैंडफुल सीड्स बैग में रखे हुए हैं और वो जो आपने बाग में लगाए हैं, उसका एक फल उससे भी महंगा होगा जो आपने एक मुट्ठी भर के बीज बैग में से लिए। उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसकी वैल्यू को इमर्ज करने के लिए बाकी क्या चाहिए? खाली अपने आप वैल्यू नहीं बढ़ती है, उसको क्या चाहिए? धरती चाहिए। उगेगा पेड़ हाथ में रखा हुआ नहीं, बैग में नहीं उगाएगा, धरती में आपने डाला, पानी भी चाहिए, सनशाइन भी चाहिए, एनवायरनमेंट भी चाहिए, केयर भी चाहिए। तो उसकी जो वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है, छाया देता है, फल देता है, खुशी देता है, बाग बन जाता है। तो हमको भी पर्पस हमारे लाइफ का है, जो हमारे अंदर स्पेशलिटीज ऑलरेडी मर्ज्ड हैं, पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हम अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करें, एक्सप्रेस करें, शेयर करें, तो अपने आप को भी खुशी होती है और जब दूसरों को मिलती है तो उनको भी कहते बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा। कोई कोई चीज़ आपने देखी, अच्छी फिल्म देखी, बहुत एजुकेशनल थी, बहुत अपने आप को अपलिफ्ट करने की थी। कहते मैं तो ऐसा मस्त हो गया, इतना आनंद आ रहा था, दिल नहीं करता था कि ये फिल्म खत्म होए। वो तो देखने वाली कौन, फिल्म फिल्म को अपने आप को नहीं देख रही, देखने वाला अलग है। तो मुझे एक्टर ने इस जीवन को लिया है अपनी ही वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए और एक्सपीरियंस करने के लिए। साइकोलॉजिकल में आप देखेंगे कि अगर बच्चे को माँ बाप ज़्यादा सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करने देते हैं, तो मेंटल प्रॉब्लम बड़ी उम्र तक रहती है। दुख रहता है कि मुझे जो करना था, जो कहना था, वो कह नहीं सके। तो अब हमको ये प्रकृति से चांस मिलता है कि हमारे अंदर जो वैल्यू है, जिनको हम ढूंढ रहे हैं, खुश रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, प्रेम से रहना चाहते हैं, रेस्पेक्ट से रहना चाहते हैं, ये स्वाभाविक है आत्मा में। छोटे बच्चों को भी सिखाया नहीं जाता प्यार क्या है, उसको पता है माँ की गोद में बैठा है, माँ का ध्यान खिंचवाता है, उसको मालूम है मामा का टेंशन मेरे पर है कि नहीं है, नहीं तो रो के भी माँ को बुला लेता है। वो प्यार की खींच है, स्वाभाविक है। और उसकी जो विशेषताएं हैं उसको बार बार याद कराने से उसकी एनहांसमेंट, उसकी पर्सनैलिटी उसी तरह से ढलती है। अगर हर समय क्रिटिसाइज ही करते रहे और कमेंट ही करते रहे तो उतना उत्साह जीवन का नहीं बढ़ता है। तो समझना है कि मेरी दृष्टि में अपने आप को पहले मैं पहचान करके अपनी वैल्यू को जानता हूँ। लाइफ तो है, लाइफ तो जानवर भी बिता रहे हैं, मनुष्य भी बिता रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं, पाल रहे हैं अपने बच्चों को। परंतु हमारा जीवन में संतुष्टि हो, खुशी हो, आत्मिक बल भरे, परमात्म प्रेम बढ़े, तो इसीलिए सबसे पहली बात यह है कि मैं कौन हूँ। सेल्फ रियलाइजेशन चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन। उससे पहले नॉलेज चाहिए। रियलाइज करने से पहले राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अब हम कहेंगे अब रॉन्ग क्या है, तो मैं मनुष्य हूं ना, गलत थोड़ा ही बोला है, तो मैं भगवान थोड़ा ही हूं, रॉन्ग तो कहो ही जाएगा ना, हम परफेक्ट थोड़े बन गए हैं। परंतु वास्तव में मैंने अपने आप को जो मुझ आत्मा की विशेषताएं हैं उनको फोकस कर करके, यानी उनको पहले इसका ज्ञान चाहिए, पर अभी वो ढूंढ रहे हैं, शांति कहाँ से मिले, सुख कैसे मिले, प्यार सच्चा कैसे मिले, क्योंकि ये आत्मा की नेचुरल क्वालिटीज हैं। और वो नेचुरल क्वालिटी उस एनर्जी में जो सोल है, आत्मा है, उसमें है। शरीर को छोड़ के जाता है तो कहते हैं लाइट इज गॉन, लाइफ इज गॉन, लाइट इज गॉन। तो क्या ये लाइट थी क्या, इलेक्ट्रिक लाइट थी क्या? फिर उनकी यादगार में हम दीवा जगाते हैं। भारत का रस्म है ये, विदेश में भी वही मोमबत्ती जगाएंगे, बुद्ध धर्म में भी वो लाइट जलाएंगे, यानी वो लाइट की यादगार है। तो ये लाइट नहीं, ये कैंडल लाइट नहीं, परंतु ये कैंडल लाइट में भी आप देखेंगे इसकी खाली एग्जिस्टेंस उसके वैक्स में नहीं है, वैक्स उसको सपोर्ट कर रहा है, परंतु लाइट किस में है? जब कैंडल जगती है तो लाइट है, वैसे कैंडल है। लाइट जगी तो लाइट जगते क्या क्या तीन चीज प्रकट हो गई इसमें से? लाइट जगते ही क्या प्रकट हुआ? लाइट बराबर, राइट। दूसरा क्या चीज, आप उंगली रखो इस पर, आग प्रकट हुई। तीसरा क्या प्रकट हुआ? वो लॉ, उसका फॉर्म, फ्लेम। आपने आग लाइट बुझा दी, तीनों चले गए। लाइट जगी, तीनों जाग गए। तो ऐसे ही हमको सिर्फ मन की शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए। आत्मा मन खाली नहीं है, आत्मा में भी शक्ति है, उसकी एग्जिस्टेंस है, वो संकल्प शक्ति है, और संकल्प शक्ति मन में होती है। तो आत्मा की जब सचमुच ज्योत जगती है तो उसमें उसको रियलाइजेशन होता है कि जो संकल्प है, जो विचार चल रहे हैं, दिमाग में चल रहे हैं, बुद्धि में चल रहे हैं, या पहले मन में चले हैं, कहते मैं मन में बहुत समय से सोच था, और कहते सोच समझ के काम कर, तीनों चीजें इकट्ठी है। सोच तो सोच मन की शक्ति है, समझ बुद्धि की शक्ति है, और कर्म हमारे कैरेक्टर अथवा हमारी पर्सनैलिटी, हमारी वैल्यूज की शक्ति है, जो लाइफ में जिसको कहेंगे शांति, नॉलेज, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, सत्यता, ये आत्मा की शक्तियां हैं। जब आत्मा चली गई, चली गई तो शरीर तो पड़ा है, सोच रहा है कुछ, हार्ट तो पड़ा हुआ है, ब्लड बॉडी में हार्ट है कि नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, तो फीलिंग किसको किसको फील हो रहा था, आत्मा को किस शक्ति के कारण, मन के कारण। मन के संकल्प अगर आपके अच्छे हैं तो आपको खुशी की फीलिंग होगी, मन के संकल्प डाउटफुल है, फियरफुल है, टेंशन वाले हैं, टेंशन होगा, रिलैक्स नहीं महसूस करेंगे। तो मन का ही काम है, चाहे आप पॉजिटिव सोचो चाहे नेगेटिव सोचो, राइट सोचो या रॉन्ग सोचो, वीक थॉट्स क्रिएट करो या स्ट्रॉन्ग थॉट क्रिएट करो, हाई वाइब्रेटिंग थॉट करो या लो वाइब्रेटिंग थॉट्स रखो, ये आत्मा की मन की शक्ति है। पर हृदय से अलग है मन, डेड बॉडी में हृदय है, हार्ट है, पर मन नहीं है। दूसरी चीज है समझ, बुद्धि, ब्रेन से हमारे जो थॉट्स निकलते हैं, जो हमको समझ आई है, वो प्रोसेस हो रहे हैं ब्रेन से, बाकी ब्रेन अपने आप सोचता नहीं है, डेड बॉडी में ब्रेन तो है ना। तो चैतन्य है भगवान, उनको बुद्धि दो, बुद्धिवानों का भगवान बुद्धि दो। तो बुद्धि क्या है एक्चुअली, आत्मा की सेकंड एग्जिस्टेंस एनाटॉमी में दूसरी शक्ति है बुद्धि। समझ जिसमें कहेंगे ज्ञान, फिर तो ज्ञान है आत्मा में, बुद्धि में ज्ञान भरा जाता है, समझ बढ़ी जाती है, फिर वो समझ जब व्यवहार में आती है तो बुद्धिमान कहा जाता है, वाइज कहा जाता है, नहीं तो या क्लेवर है, इंटेलिजेंट है, क्रिएटिव है, उसकी अदर विशेषताएं जो वर्णन करेंगे, परंतु विशेषता को जब प्रैक्टिकल में स्वयं में लाता है और दूसरे को भी देता है, वेस्ट नहीं करता, तो कहते बड़ा वाइज पर्सन है, विजडम है। और वो जब व्यवहार में कर्म इंद्रियों से एक्सप्रेस होती है, वो हमारा एक्शन बार बार व्यवहार में आते, अगर वो वर्च्यू अगर वैल्यूज के एक्सप्रेस है तो फिर सेटिस्फेक्शन होती है लाइफ में, अच्छा लगता है, हम फौरन कहते हैं परफेक्ट, वेरी गुड, इट्स रियली अच्छा है, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट एंड फ्री फ्रॉम इफेक्ट। डिफेक्ट भी नहीं है, इफेक्ट भी कोई बाहर की चीज का नहीं है, उसकी ओरिजिनल पर्सनालिटी में फिर वो प्योरिटी है, उसकी ओरिजिनल पर्सनालिटी में सेल्फलेसनेस है, ओरिजिनल पर्सनालिटी में बेनेवोलेंस है, विजडम। तो ये तीनों चीजें जब कंबाइंड एक्ट में आती है उसको सोल कॉन्शियस कहा जाता है, सेल्फ अवेयरनेस। पर सेल्फ अवेयरनेस एक फर्स्ट लेवल है, नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ। तो यह हुआ कि क्या नो दाई सेल्फ, दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल, आई एम अ सोल, बट आई हैव दिस बॉडी। ये मेरी बॉडी, बॉडी ने मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है बॉडी। उस मेरी से फिर कितने मेरे इमर्ज होते हैं, मेरी बॉडी है तो मेरी बॉडी में मेरा रिलेशन, दिन में कम से कम 5-6 चीजों के लिए मेरा मेरा हम बोलते हैं। सबसे पहले मेरी बॉडी, मैं इसका ध्यान रखती हूँ, इसको यूज करती हूँ, तो मेरे को कुछ खाना है तो मेरा ऑटोमेटिकली हाथ में ध्यान जाएगा, मुख पर ध्यान जाएगा, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। अब मेरी ये पर्सनल प्रॉपर्टी, क्यों कहती हूँ पर्सनल प्रॉपर्टी है, इसको कोई दूसरा जो है, कितनी भी मैं मर्सीफुल हूँ, लवफुल हूँ, कोई यूज नहीं कर सकता। मुझे कितनी मर्सी है कि बेचारा अंधा है कोई व्यक्ति, वो देख नहीं सकता है। मैं 4 घंटे नींद करती हूँ, मैं कहूँ अच्छा मैं सो गई, सो रही हूँ, प्लीज बारो माई आईज एंड गो अराउंड एंड सी द ब्यूटी ऑफ द मैटर नेचर। बारो कर सकेगा कोई आंखें? मेरी साड़ी, मेरी ड्रेस, किसी को कम जरूरी काम में जाना है, उसके पास अच्छी ड्रेस नहीं है, आप कहेंगे अच्छा मेरी जैकेट पहन करके आप इंटरव्यू देने चले जाओ, राइट? आप दूसरे को बाहर की चीज हो गई। अच्छा मेरे टांगे जो हैं मजबूत हैं, मेरे ग्रैंडफादर की टांगे कमजोर हैं, मैं ये नहीं कहती अच्छा पापा मेरे व्हील ले लो, ये मेरे टांगे ले जाओ और आप सैर करके आ जाओ। ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। हाँ मेरी इच्छा है कि मैं अपनी किडनी का डोनेशन दूं, अपने ऑर्गन्स का डोनेशन दूं, फिर वो मेरा नहीं रहा, फिर वो किडनी उसकी हो गई। तो एक है मेरी पर्सनल, मेरा मेरा कहने वाली मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी, इस प्रकार का मेरा हम यूज करते हैं, मेरा पैर, मेरा हाथ, मेरा सिर दर्द है। ये कभी नहीं कहा मैं सिर दर्द हूँ, मैं पेट दर्द हूँ, मैं टांग टूट गई हूँ, मेरी टांग टूट गई है। दिन रात मैं कहती हूँ, परंतु मुझे अवेयरनेस होते हुए भी रियलाइजेशन नहीं है कि मैं ये नहीं हूँ। इतना मैं नेचुरल बॉडी कॉन्शियस हूँ, जो मुझे ये नेचुरल लगता है, मैं तो फलाना हूँ ना, फिर मैं रिलेशन कॉन्शियस, मैं बाप हूँ, मैं माँ हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, मैं सास हूँ, मैं ससुर हूँ, मैं डॉटर इन लॉ हूँ, मैं बेटा हूँ। उसमें हम क्लेम करते हैं, अथॉरिटी रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, उसमें गुण भी आ जाते हैं तो अवगुण भी बढ़ जाते हैं। तो सेकंड टाइप ऑफ मेरा जो मुझे बांधता है, संबंध के बजाय बंधन में मेरा मन बार बार जाता है। दूसरे तरह का मेरा जिसको मैं सचमुच कहती हूँ मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी है, पर वो उसको मैं शेयर कर सकती हूँ। मेरी बॉडी मेरी है पर मेरी आंखें शेयर मैं नहीं कर सकती, मेरी टांगे मैं शेयर नहीं कर सकती, बारो कोई नहीं कर सकता। सेकंड प्रकार की प्रॉपर्टी जो है मेरी, मेरे संबंधी है। मेरी बहन भी मेरी माँ को कहेगी मम्मी, और मैं भी कहूँगी मम्मी या मामा, जो भी मैं कहूँ। मेरी बहन का भाई मेरा भी भाई है, तो हम वो शेयर कर सकते हैं, शेयरेबल प्रॉपर्टी है, केयर करने वाली प्रॉपर्टी है, शेयर करने वाली प्रॉपर्टी। तीसरी प्रकार की प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। आज मेरे पास कोई बड़ा मकान है, कल बच्चे बड़े हो गए हैं, कोई अमेरिका में है, कोई अफ्रीका, कोई जापान है, कहाँ पर भी हैं, भाई मेरे से इतना मकान नहीं संभाला जाता, मैं छोटा ही ले लेती हूँ, मैं उसमें सुखी हूँ, बड़ा मकान छोट के छोटा लिया। परंतु तो अभी वो मकान किसी और ने खरीद लिया, मेरे पास में कोई राइट नहीं है, वो रिपेयर करें या ना करें, सफाई करें या ना करें, मैं उससे डिटैच हो गई, वो ट्रांसफरेबल है। थी तो मेरी प्रॉपर्टी, बिजनेस मेरा था, मैंने बेच दिया, अभी उनको घाटा है या वाधा है मेरे को मालूम नहीं, मैं डिटैच हूँ। तो इसीलिए दूसरी बच्चा प्रॉपर्टी, तीसरे प्रकार की प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। चौथी प्रकार का मेरा मेरा जो मैंने कहा, बड़ा सटल है, मेरा आइडिया, मेरा विचार, मेरी क्रिएटिविटी, वो मैं किसी को बहुत या तो दूंगी तो एहसान चढ़ा के दूंगी, और या छिपा के रखूंगी या शो करूंगी, तो उसमें भी बहुत सारे प्रकार की पर्सनालिटी का पता चलता है कि व्यक्ति में वैल्यूज हैं कि नहीं है। तो जीवन किस लिए मिला है कि मैं ऑब्जर्वर हो करके, सेल्फ रियलाइज करके अपनी वैल्यूज को वैल्यू दूं और उसको इंक्रीज करूं, शेल से उसको डायमंड बनाऊं, डायमंड से शेल में ना चेंज करूं। डायमंड के फैसेट्स बहुत है, उसकी वैल्यू बहुत है, शेल एम्प्टी है, जल्दी टूट जाता है। मैं लाइट हूं तो सदा जगते हुई लाइट रहूं, ये नहीं कि आज लाइट हूं कल मेरे पास अंधेरा रहे। तो वो कैसे, वो लाइट क्या है, शरीर में कहाँ रहती है, हम फंक्शन कैसे करते हैं, आत्मा ने शरीर छोड़ा तो कहाँ जाएगी और ओरिजिनली कहाँ से आई थी, ये टॉपिक थोड़ा गहरा है, इंटरेस्टिंग है बहुत। टाइम के हिसाब से तो मैं इतना ही बताती हूँ कि अवेयरनेस अलग चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस है, इन्फॉर्मेशन हुई अवेयरनेस आ गई, सेकंड स्टेप अंडरस्टैंडिंग आ गई, थर्ड स्टेप एक्सपेरिमेंट, फोर्थ स्टेप एक्सपीरियंस एंड फिफ्थ है द एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट। तो वो जो वैल्यूज है हमारी, उसके हम एम्बॉडीमेंट बन जाए, ऑटोमेटिकली हम लाइफ में आ जाए, तो हम अनेकों को सुख भी दे सकते, प्यार भी दे सकते, और मोर वी गिव द मोर इट इंक्रीजेस। द मोर यू शेयर यू विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग, योर शेयर आर इंक्रीजिंग, देयर इज नो हार्म। वो बिजनेस वाला शेयर जो है कर्प, वो नहीं, ऐसा नहीं है जो आपने लॉस किया, गेन ही करते रहेंगे। और जहाँ प्राप्ति है वहाँ आनंद ही आनंद है, जहाँ आपसी मिलन है वहाँ खुशी खुशी है। तो ज्ञान सरोवर में आपका फिर से हार्दिक वेलकम है, वेलकम है, वेलकम है। अपने घर में पधारे हैं, कभी भी कोई संकोच नहीं करे, जो चाहिए सो शेयर कहे, घर है खाएंगे भी यही, जो चार दिन आप रह रहे हैं सोएंगे भी यही, घूमेंगे भी सही, कोई चीज की क्लैरिटी चाहिए तो संकोच नहीं करे, मोस्ट वेलकम है। आपस में भाई बहन यहाँ आपकी सेवा पर उपस्थित हैं, तो जो शेयर करना होगा आराम से और प्रेम से करेंगे। ओम शांति।
थैंक यू दीदी। स्थान का नाम ही है ज्ञान सरोवर, तो ज्ञान सरोवर है, तो ज्ञान कैसे अर्जित करना है वो आदरणीय दीदी ने हमें बताया कि सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन अवेयरनेस, उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग, और कैसे उसको आगे बढ़ाते हुए हमें एम्बॉडीमेंट, उसको एक्सपेरिमेंट भी करना है, एक्सपीरियंस भी करना है, फिर एम्बॉडी करना है। तो ये जो हम तीन चार दिन हैं, इन सभी स्टेप्स को कंप्लीट करते हुए यहाँ से जब जाएं तो क्या, किस स्टेज पे जाएं, कौन सी स्टेज होनी चाहिए जब यहाँ से जाएं, व्हाट शुड बी आवर स्टेज? एम्बॉडीमेंट, embodiment. तो ये लक्ष्य रखेंगे हम सभी अपने लिए. आदरणीय दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद इन आशीर्वचनों के लिए, अनमोल बातें. और जो दीदी ने अभी बहुत ऊपर ऊपर से हमें टच की है बातें, और दीदी ने कहा गहराई बहुत है इन चीजों की, और वो गहराई प्राप्त करेंगे हम इस रिट्रीट के दौरान. तो वी ऑल टुगेदर लुक फॉरवर्ड टू दिस डिवाइन एक्सपीरियंस. एंड अभी लेट्स मूव टूवर्ड्स रियल एक्सपीरियंस. डिवाइन एक्सपीरियंस तो हमको होगा ही होगा, लेकिन अभी हम एक बहुत गहरे मेडिटेटिव एक्सपीरियंस की ओर आगे बढ़ते हैं. जो दीदी ने बताया कि मैं शांति हूँ, मैं प्रेम हूँ, हर चीज की अपनी एक वर्च्यू होती है. ये लाइट भी है तो इसकी भी वर्च्यू है, प्रकाश दे रही है, हीट दे रही है. मैं क्या दे रही हूँ संसार को, मैं वही दे पाऊंगी जो मैं हूं. तो लेट अस अंडरस्टैंड एंड लेट अस एक्सपीरियंस कि मैं कौन हूं. आत्मा तो हूं, लेकिन वो आत्मा की प्रॉपर्टीज क्या है उसका थोड़ा अनुभव करते हैं. एंड शुरुआत में जैसे कि मैंने आपको बताया, दो दिन पहले ही हमारे जो आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी, हु वॉज द चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसे कि आपको बताया, अनाउंस किया था कि हमारी आदरणीय दादी जी ने संपूर्णता को प्राप्त किया और अपने पुरानी शरीर को, अपने पुराने वस्त्र को छोड़ करके आगे की जर्नी के लिए बढ़े हैं. शी लिव्ड मोर देन अ सेंचुरी एंड दैट सेंचुरी, वन सेंचुरी हैज बिकम द सीड टू एनलाइटन एंड टू bring into existence many centuries. तो दो मिनट हम उनके प्रति अभी साइलेंस ऑब्जर्व करेंगे. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब भी दो मिनट साइलेंस ऑब्जर्व करेंगे, और उसके बाद में इस सेरेमनी को हम आगे बढ़ाएंगे. पहले हम दो मिनट के लिए साइलेंस ऑब्जर्व करेंगे, अनुभव करेंगे कि जो साइलेंस स्थान पर है ऐसे ही मेरे अंदर की दुनिया में भी साइलेंस है. जस्ट फॉर टू मिनट्स एक्सपीरियंस द साइलेंस, द पीस विद इन. And the soul that has departed is an embodiment of all virtues. The virtues that great soul has spread in this environment. As I absorb these virtues of the environment, I thank that soul for leaving behind a legacy of divinity, peace and power. Om Shanti. Let us plant the seeds of peace within us. We have conducive environment. We have time. We have opportunity. We have the sustenance of great yogis. So, अपने अंदर, अपने भीतर हम आज ये निश्चय करें कि इन वर्च्यूज के, पावर्स के सीड को हमें अपने अंदर प्लांट करके जाना है, और रोज उसको एक दृढ़ता का, यस आई हैव टू सस्टेन दिस वर्च्यू नो मैटर व्हाट हैपेंस आउटसाइड, The world will try to distract me. But I have to cultivate these virtues within me. तो उसके लिए रोज दृढ़ता का पानी डालना है. And उसी के लिए symbolically अभी मैं request करती हूँ आदरणीय सुदेश दीदी जी से और यशवंत भाई जी से कि symbolically मंच पर भी वृक्षारोपण पौधा रोपण करके हम यहाँ पर करेंगे स्टेज पे. आप अपने मन में कीजिएगा कौन सा पौधा वो आप चूज कर लीजिए. बहुत सारे सीड्स अवेलेबल है यहाँ पे. कौन सा सीड आप चूज करना चाहते हैं वो आप अपने लिए डिसाइड कीजिएगा. सो नेचर इज नॉट जस्ट दैट नेचर, नेचर इज ऑल्सो माई नेचर, मेरा स्वभाव. तो ये नेचर जैसे देता है, मेरा अंदर का नेचर भी क्या क्या दे रहा है आज अपने आप से हम ये पूछेंगे. As I invite respected Sudesh Didi ji and Yashwant bhai to plant this tree, and उसके बाद में आप सभी के लिए gifts भी यहाँ पे है. ज्ञान सरोवर है तो gift भी ज्ञान वाली ही है. So ये diary और pen आप सभी को मिल रहा है as a gift, ताकि आपको जो भी अच्छा लगे इस retreat के अंदर you can keep a note of it. So after this plantation we will announce.
ये प्लांट का एक नया हम ट्रेडिशन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा कैंडल लाइटिंग होती है तो. और ये पीपल का पेड़ है तो ये हमको 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है. तो ऑक्सीजन है तो हम हैं, इसीलिए ये एक बड़ा हम लोग फिर इसको गार्डन में हम फिर कल लगाएंगे. तो आप सबकी तरफ से दादी रतन मोहिनी जो हमारे हेड थे उनके यादगार में हम लोग ये प्लांट लगाएंगे. ओम शांति.
थैंक यू दीदी, थैंक यू यशवंत भाई एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. सो हमने ये वाला कैंडल भी जलाया और हमने अपने अंदर वो सीड भी संकल्प का बोया. अब उसकी पालना भी हमें करनी है, उसको पानी भी देते रहना है, उसको नॉलेज की धूप भी देते रहनी है, और जो भी बीच बीच में वेस्ट थॉट्स के वीड्स आएंगे उसको भी निकालते रहना है. और ज्ञान सरोवर में अभी आए हैं तो ज्ञान की सौगात अभी आप सभी को मिल रही है अलोंग विद ब्लेसिंग. सो अभी आई विल अनाउंस रो बाय रो हम लोग ऊपर आएंगे. सो वी विल कम फ्रॉम दैट साइड. ईच रो बाय रो वी विल टेक दृष्टि, पावर्स थ्रू दृष्टि वी विल टेक दिस सौगात, दिस गिफ्ट एंड ब्लेसिंग कार्ड फ्रॉम वर्षा दीदी. तो जैसे कि बताया हमारे वर्षा दीदी पूरे अपने जोन के अंदर आईटी के कोऑर्डिनेटर हैं. तो एक एक करके हुए लेते हुए वी विल कम डाउन फ्रॉम दीज स्टेज एंड गो बैक एंड बी सीटेड इन आवर ओन सीट्स. सो प्लीज एक एक रो बाय रो हम लोग ऊपर आएंगे ले करके वापस अपने राइट. सो यू आर गेटिंग दैट गिफ्ट एंड दिस यूनिक ब्लेसिंग कार्ड. एज यू कैन सी इट इज अ हैंडमेड वेरी स्वीटली मेड ब्लेसिंग कार्ड फॉर ऑल ऑफ यू एंड दिस हैज अ ब्लेसिंग फॉर यू. सो व्हेन यू रीड द ब्लेसिंग ट्राई टू रिलेट इट टू योर सेल्फ एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल फाइंड इट वेरी रिलेटेबल राइट. सो प्लीज एक्सेप्ट इट विद दैट भावना, विद दैट फीलिंग.
ओम शांति. This gift that you are going to receive, a notebook, is not a notebook. Only to we write on a piece of paper, but it is to note in a mind, an intellect, and becoming the embodiment of it, sanskaras, man, buddhi, or sanskar. So put it in that water, yourself a living plant with this wisdom that you are going to receive. And in fact, at any page you will open, you will see there would be one slogan is up, another slogan is on the bottom. So read in the morning and then think about it, and the second again before you go to sleep, check whether you kept that or include it. Now I open suddenly, and what is this? Balance in being loveful, and loveful makes you merciful. Merciful makes you world benefactor, a donor. So have I this quality developed in me? In the same way, education feels the self from free bondages, education frees the self from obstacles and brings benefit to all. So it is just like the blessing is already in it, and blessing you have, that is also in it. So definitely this is permanent.